सुनना होगा। तो ऐसे रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे और जिसको द्रविड़ देश कहा जाता है, बल्कि द्रविड़ शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल शंकराचार्य ने किया था। उन्होंने अपने स्तोत्र में लिखा था, मैं कहाँ का बच्चा हूँ, हम कहते ना मैं बिहारी हूँ, वो लिखते द्रविड़ शिशु, मैं कहाँ का शिशु हो, द्रविड़ का शिशु हो, ऐसे शंकराचार्य ने अपने स्तोत्र में लिखा था। तो ये नाम भी इसलिए है द्रविड़, द्रव शब्द से द्रविड़ आया है। द्रव मतलब तरलता, जहां बहुत सारी नदियां बहती हैं। दक्षिण भारत जाओ अब कितनी सारी नदियां हैं, कृष्णा, ताम्रपर्णी, पयस्विनी और बहुत सारी नदियां हैं। तो ऐसे पांच स्टेट्स को मिलाकर क्या कहते हैं, द्रविड़ देश कहते हैं। और जो समंदर से घिरा हुआ है, प्रकार से समंदर के नजदीक है, तीन समंदरों के नजदीक है द्रविड़ देश, आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी एंड लक्षद्वीप, इन पांचों को मिलाकर द्रविड़ देश कहा जाता है। और वहां की पांच भाषाएं पता है आपको, संस्कृत से उन भाषाओं का जन्म हुआ है। ऐसे महान ऋषि वहां प्रकट हुए थे, लैंग्वेजेस अस्तित्व में नहीं थे, उन्होंने उसको कंपाइल किया। मैं कल एक तमिल कुछ पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे शब्द संस्कृत से, बहुत बहुत संस्कृत के शब्द इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, तो वहाँ तमिल, कन्नाड़ा, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु और एक लैंग्वेज है तुलु, तो ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं। और दक्षिण भारत वास्तव में कहाँ सभ्यता है, सदाचार है, सत्व गुण है, तो वो कहाँ पाया जाता है, दक्षिण भारत में। वहां आज भी वैदिक संस्कृति दिखाई देती है, बल्कि नॉर्थ इंडिया में मुस्लिमों ने आकर उसका ध्वंस कर दिया है। लेकिन दक्षिण भारत आप जाओ तो जहां भी जाओगे गांव में वगैरह, जो स्त्रियां हैं जल्दी उठकर अपने घर के सामने गोबर का लेप करती है, रंगोली बनाती है, चाहे कितने गरीब क्यों ना हो। कई बार गया था तो गांव में देखा, लोगों के घरों के सामने, शहर में भी रहते हैं तो पानी डाल के तुरंत रंगोली बनाते उठते हैं। तो इससे पता चलता है स्त्रियां क्या है, सत्व गुण में है। यहाँ की स्त्रियां या यहाँ के लोग, हाँ, तमोगुण, रजोगुण से बहुत अधिक प्रभावित है। लेकिन दक्षिण भारत से, भारत में एक राधानाथ महाराज का लेक्चर सुन रहा था बहुत साल पहले, वो कहते हैं यहाँ तो वैष्णव सदाचार सीखने के लिए क्लासेस लेनी पड़ती है, लेकिन वहां गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी वैष्णव सदाचार में एक्सपर्ट है, वैष्णव एटिकेट में, उसको पता है कैसे व्यवहार करना है, कैसे पालन करना है। वहां के लोग सदैव तिलक लगाते हैं, धोती धारण करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्यों ये सब, क्योंकि इन आचार्यों का प्रभाव वहां है, आचार्य जन्मभूमि है वहां। लेकिन आजकल वहां भी क्या हो गया है, हाँ, ये सब चीजें नष्ट हो रही है। क्यों, टॉलीवुड का प्रभाव। किसका प्रभाव, टॉलीवुड, जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड वैसे मूवीज है ना, तमिल तेलुगु, उसको टॉलीवुड कहते हैं। तो इस प्रकार से उसके प्रभाव से वहां गांव में भी अभी ये सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो रही है। हाँ, तो ऐसे ऐसा वो स्थान है। आज भी जाओगे आप दक्षिण भारत में, हर कोने कोने में मंदिर है। छोटे से टाउन में जाओगे, वहां इतने विशाल मंदिर, 4,000 पुराने, जगन्नाथपुरी का मंदिर देखा है, वो छोटा है, उससे बड़े बड़े मंदिर हजारों हजारों। तो वहां वैदिक संस्कृति बहुत प्रभावशाली थी, इवन मुस्लिमों का इतना अधिक प्रभाव नहीं था। हाँ, वो संस्कृति का जतन किया हुआ था। तो ये जो श्री संप्रदाय है उसकी प्रमुख जड़े दक्षिण भारत में है। और श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन थे, श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य ने वास्तव में पूरे भारत वर्ष में प्रचार किया है भगवत भक्ति का, और विशेष रूप से उन्होंने बौद्धों को, मायावादियों को परास्त किया और उनको वैष्णव बनाया। और विशेष रूप से उन्होंने विग्रह की सेवा और मर्यादा का कैसे पालन करना चाहिए, सदाचार कैसे होना चाहिए, इन सब चीजों का ज्ञान उन्होंने वास्तव में दिया है। तो ये हर एक संप्रदाय के बारे में हमें जानना आवश्यक है, हमें इसी में नहीं लगा रहना चाहिए, मैं और मेरा। कभी कभी होता है ना, जब तक हमारे अंदर दूसरे भक्तों को, दूसरे वैष्णवों को गुणगान करने की, उनकी प्रशंसा करने की भावना नहीं आएगी, तब तक हमारा अनुराग भगवान के प्रति नहीं होगा। उन्नत भक्त का लक्षण क्या है कि वो हर छोटे से छोटे भक्त से लेकर उसकी सेवाओं को क्या करता है, उसकी प्रशंसा करता है। जितना ये प्रशंसा का भाव हमारे हृदय में आएगा, उतना ही अधिक हमारा जो हृदय है निर्मल होने लगेगा, और उतने ही अधिक भगवान हमारे हृदय में क्या होने लगेंगे, बंधने लगेंगे। अभी सुबह से हम कितनी प्रशंसा करते हैं, हमें तो आदत लगी हुई है प्रशंसा सुनने की। किसकी? अपनी प्रशंसा, अपनी स्तुति, अपना गुणगान। लेकिन वास्तव में वो महान भक्त है जिसके हृदय में, जिसके जीवा में दूसरों की सेवा के प्रति या दूसरों के समर्पण के प्रति प्रशंसा का भाव। जब हम दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो एक चीज हमसे दूर चली जाती है, वो क्या है, ईर्ष्या या द्वेष। क्योंकि जितना हमारे अंदर ईर्ष्या और द्वेष होता है, दूसरों की स्तुति या प्रशंसा करना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इसलिए ये आवश्यक है, और ये हम सीख सकते हैं इन भक्तों का गुणगान करके, उनकी स्तुति करके। तो ऐसा ये जो श्री संप्रदाय है, श्री नहीं, कौन सा दूसरा वाला श्री, श्री संप्रदाय, श्री मीन्स कौन, लक्ष्मी देवी। तो ये श्री संप्रदाय लक्ष्मी देवी भगवान नारायण से ज्ञान प्राप्त करती है डायरेक्ट, और फिर ये लक्ष्मी देवी आगे ये ज्ञान अपने अनुयायियों को प्रदान करती है। तो ये लक्ष्मी देवी से ये शुरू हुआ था संप्रदाय, और वास्तव में बहुत पुरातन संप्रदाय है। हमें केवल यही पता है कि इस संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य है, लेकिन नहीं, उनसे पहले भी बहुत पावरफुल आचार्य हुए थे उस संप्रदाय में। उनसे पहले एक आचार्य हुए, उनका नाम था यमुनाचार्य। क्या नाम था? उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, ऐसे आचार्य थे यमुनाचार्य। उनसे पहले एक आचार्य हुए, उनका नाम था नाथ मुनि। ऐसे वास्तव में ये जो नाथ मुनि है, उनसे ये आचार्य परंपरा एक प्रकार से शुरू होती है, और नाथ मुनि से पहले भी बहुत महान आचार्य गण हुए हैं जिनका मैंने कल उल्लेख किया था। क्या थे वो, उनका नाम क्या था, बारा अलवर थे। क्या थे? बारा अलवर। तो जिस प्रकार से हमारे संप्रदाय में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, और उनके साथ अलग अलग डिवोटीज, गोपिकाएं वगैरह, ब्रज के भक्त प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से श्री संप्रदाय में भगवान के जो आयुध हैं, आयुध का मतलब है शस्त्रास्त्र, वो प्रकट होते हैं अलवरों के रूप में। भगवान की तलवार, भगवान का गदा, भगवान का चक्र, भगवान का श्रीवत्स, ये ऐसे कलयुग शुरू होकर 100 साल हुए थे तब ये सारे 12 डिवोटीज जन्म ले, अलग अलग समय में 12 एक दूसरे को नहीं जानते थे, केवल 3 एक दूसरे को जानते थे। तो ऐसे भक्त प्रकट हुए थे जो भगवान के जितने भी शस्त्र हैं, भगवान का जो पीतांबर है वो भी भक्त के रूप में आ गया। ऐसे अलग अलग भक्त आ गए, सत्संग में अवतार लिया भक्त के रूप में। क्यों? केवल प्रचार करने हैं तुम। और उनका नाम क्या पड़ा? अलवर पड़ा उन सबका नाम। तो ऐसे अल का मतलब होता है, जैसे मैंने कल भी लेक्चर में कहा था, जो डूबा रहना है, वेरी डीप। और वर का मतलब क्या है? लव ऑफ गॉड, जो भगवान का जो टॉप मोस्ट प्रेम है। तो ये सारे भगवान के पार्षद थे, अलग अलग समय में आए थे, और इन भक्तों ने, 12 भक्तों ने जिस जिस स्थान पर भगवान की स्तुति की, उस स्थान को एक कहा जाता है दिव्य देशम। क्या कहा जाता है? दिव्य देशम। जिस प्रकार से श्री संप्रदाय में एक मान्यता है, उनके 108 प्रमुख स्थल है इस जगत में, प्रमुख विग्रह है। कितने विग्रह है? 108। जैसे हमारे संप्रदाय के तीन है, तीन नाथ है, कृष्णदास कविराज कहते हैं, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन, ये हमारे नाथ है। उसी प्रकार से श्री संप्रदाय में 108 विग्रह है, और जो विग्रह या स्थान है, जिस स्थान में है उसको दिव्य देशम कहते हैं। हाँ, दिव्य का मतलब दिव्य देशम में जहाँ भगवान निवास करते हैं, उनमें से भी वहाँ चार प्रमुख स्थान है श्री संप्रदाय के। ऐसे कहा जाता है कि यदि व्यक्ति 108 में 106 इस जगत में है और 2 वैकुंठ जगत में है। यदि कोई व्यक्ति 108 को विजिट करता है अपने जीवन काल में, उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। हाँ, तो कहते कि 106 इधर एक गोवर्धन में भी है, कभी आप जाते हो गोवर्धन परिक्रमा, वहां भी है, गोवर्धन परिक्रमा शुरू करते वहां एक विग्रह है लक्ष्मी नारायण, वो भी एक दिव्य देशम है। तो यदि कोई व्यक्ति 106 में विजिट करता है तो दोनों का दर्शन करने के लिए उसको कहां भेजा जाता है? वैकुंठ। इतना सरल है श्री संप्रदाय में भगवान के धाम जाना। उसमें से भी उनके चार प्रमुख स्थान है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रामानुजाचार्य से क्या है, संबंधित है। रामानुजाचार्य इन चार चीजों से बहुत, चार स्थानों से बहुत अधिक प्रीति रखते थे। जिस प्रकार से हम तीन धामों में जाते हैं गौड़िया वैष्णव, कौन कौन से धाम है? वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर। पूरे दिन साल भर हम सोचते रहते मायापुर जाना है, मायापुर जाना है, गौर पूर्णिमा जाऊंगा अभी, ऐसा सोचते। हाँ, फिर वृंदावन, जगन्नाथपुरी। तो उसी प्रकार से श्री संप्रदाय में भी चार स्थान है जो श्री संप्रदाय के वैष्णवों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, चार जो स्थल है। और ये चारों श्रीपाद रामानुजाचार्य को बहुत अधिक प्रिय थे। जैसे प्रभुपाद ने कहा, मेरा घर वृंदावन है और मेरा ऑफिस क्या है? मुंबई है, और मेरा जो पूजा का स्थल है वो कौन सा है? मायापुर है। तो उसी प्रकार से रामानुजाचार्य भी इन चारों से बहुत प्रेम रखते थे, चार स्थानों से। और इन चार स्थानों में भगवान की चार प्रकार से सेवा की जाती है। एक स्थान है, सबसे पहले है श्रीरंगम। कौन सा स्थान है? श्रीरंगम। सुना है आपने श्रीरंगम? आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत का यात्रा है, उसमें सब वर्णन आता है। श्रीरंगम जिस स्थान को कहा जाता है भोग मंडल, क्या कहते हैं? भोग मंडल। मीन्स वहां हम भगवान कृष्ण इज एंजॉय, भगवान एंजॉयमेंट चाहते हैं। तो उस स्थान में भगवान श्रीरंगम में अलग अलग प्रकार के भोगों को स्वीकार करते हैं, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ऋषि केना ऋषि केश सेवनम भक्ति रुचते। मतलब भगवान को देना, और भगवान को देते तो हम संतुष्टि अनुभव करते हैं। जैसे अपने आप को तिलक लगाना है तो आईने में हम सामने देखते हैं, अपने को तिलक लगाएंगे तो आईने में जो व्यक्ति उसको भी तिलक लग जाएगा, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। तो उसी प्रकार से हमें वहां जो भगवान है रंगनाथ, वो ये आकांक्षा रखते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ निवास करेगा आएगा, वो मेरी सेवा करे नाना प्रकार के भोग प्रदान करके, जिसको भोग क्षेत्र कहते हैं। और दूसरा है श्री संप्रदाय का महत्वपूर्ण स्थान तिरुपति। कौन सा पति? तिरु। तिरु का मतलब है लक्ष्मी, तिरु जो शब्द है उसका अर्थ है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के पति जो निवास करते हैं उस स्थान को कहते हैं पुष्प मंडल। क्या कहते हैं? वहां भगवान को प्रसन्न करना सबसे इजी है। इन चारों में सबसे इजी वे है भगवान को प्रसन्न करने का, कौन सा प्लेस? तिरुपति। इसलिए लोग दौड़ते हैं तिरुपति के लिए, है ना। तो तिरुपति पुष्प मंडल है जहां बालाजी को सबसे अधिक फ्लावर्स बहुत प्रिय है, क्योंकि गीता में उन्होंने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान फूल देने मात्र से इतने प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब फूल अर्पित करो कि आपको वो इतनी चीजें देंगे कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, ऐसे भगवान वहां निवास करते हैं। और तीसरा स्थान है जहाँ रामानुजाचार्य बहुत साल तक रहे, लगभग 12 साल रहे, छुप कर रहे, जिसको कहते तिरुनारायणपुरम, उसको मैसूर के पास है, मेल्लकोटे भी कहा जाता है उसे, तिरुनारायणपुरम, उसको कहते विद्या मंडल। मीन्स आप बाकी जो तीन स्थान है वहां नहीं भी गए तो भी चलेगा, आपको यहाँ जाना चाहिए तिरुनारायणपुरम में। और वहां जाकर एक दिन भी आप स्टे करते हो और वहां रामानुजाचार्य के ग्रंथों को पढ़ते हो, श्री भाष्य को, उसके जो शुरुआत के 5 श्लोक हैं और उसको समझते हो, तो आपका भगवत धाम जाना निश्चित है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। और चौथा स्थान है जो रामानुजाचार्य को बहुत प्रिय था, वो स्थान कौन सा है? कांचीपुरम। कौन सा स्थान? कांचीपुरम। का मतलब है ब्रह्मा, और अंची का मतलब होता है वर्शिप, जहां पूजा की ब्रह्मा ने, पूरम मतलब प्लेस या निवास स्थल, तो जहां ब्रह्मा ने निवास करके भगवान वरदराज की आराधना की, वो स्थान कौन सा है? कांचीपुरम है। तो कांचीपुरम वो स्थान है जहां, जिसको दूसरी दूसरा वर्ड है त्याग मंडल, 4 मंडल है ना, एक कौन सा हो गया पहला भोग मंडल, दूसरा हो गया पुष्प मंडल, तीसरा हो गया विद्या मंडल, चौथा त्याग मंडल। तो यहाँ निवास करना और यहाँ के विग्रह को संतुष्ट करना सबसे डिफिकल्ट है। वहां निवास करते वरदराज, आप जाओगे वरदराज ऐसे हाथ किया हुआ है, वर देते हैं और उनके हाथ में लिखा हुआ है गीता का एक शब्द, डरो मत, ऐसे लिखा हुआ है एक शब्द। तो भगवान इतने ऊंचे हैं, ऐसे खड़े हैं, कहते डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो ऐसे वहां भरतराज है, तो वहां के जो भगवान है, वो जो स्थान है, हमसे आशा करता है कि हम क्या करें उनके लिए, त्याग करें। जैसे आप मायापुर जाते हो तो वहां का लाभ उठाना है तो हरिनाम करना, ओनली हरिनाम, कुछ नहीं करना। वृंदावन जाते हो तो वहां केवल धुन में लोटपोट हो जाना, कुछ और करना नहीं। जगन्नाथपुरी जाते हो तो वहां क्या करना? प्रसाद खाते रहना। द्वारका जाते हो तो भगवान को केवल धन आदि अर्पित करना, वो बस आप उनकी कृपा प्राप्त करोगे। रामेश्वरम जाते हो तो केवल वहां स्नान करना, कुछ और नहीं करना। बद्रीनाथ जाते हो तो वहां क्या करना? तपस्या। तो हर धाम की कृपा प्राप्त करने के लिए एक विशेष कार्य होता है उस स्थान का, जो एक साधक या जो विजिटर है उसको करना परम आवश्यक है। तो ये जो कांचीपुरम है, ये विशेष स्थल था जहां श्रीपाद रामानुजाचार्य ने निवास किया था। और रामानुजाचार्य ने अपने जीवन में भगवान की सेवा के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, सब कुछ त्यागा। किसकी सेवा के लिए? गुरु, उनके गुरु यमुनाचार्य, उनके बहुत गुरु थे। रामानुजाचार्य के एक दीक्षा गुरु थे, लेकिन 10-12 शिक्षा गुरु थे और एक से बढ़कर एक। रामानुजाचार्य का जीवन मतलब रोमांच लाने वाला है, यदि आप पढ़ोगे उनका जीवन चरित्र, तो उनके जैसा जीवन चरित्र किसी और आचार्य का नहीं पाया जाएगा। ऐसा भरा हुआ है 2 चीजों से, भगवान की सेवा के लिए समर्पण और वैष्णवों की सेवा। तो जैसे हमने कल कहा था जब हम मध्वाचार्य की चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने रामानुजाचार्य के संप्रदाय से 2 चीजें ली, कौन सी 2 चीजें हैं, किसको याद है? लिखा होगा तो कल का देखो क्लास। 2 चीजें, एक है अनन्य भक्ति, क्या था? अनन्य भक्ति। और दूसरा था भक्त जन सेवा, जन सेवा नहीं, उसके आगे क्या है? भक्त जन। जन सेवा को भौतिक कार्य है, पुण्य कर्म हो सकता है, वो भक्ति भक्ति देने वाला कर्म नहीं है। जन सेवा के आगे क्या लगाओ? भक्त, भक्त जन सेवा, भक्तों की सेवा, ये दो चीजें उस संप्रदाय की थी। मुझे आज ऐसे लग रहा है कि क्या क्या बोलूं, इतनी सारी चीजें दिमाग में घूम रही हैं, तो देखता हूं मैं क्या अभी आधा घंटा है क्या बोल पाऊंगा। तो रामानुजाचार्य के जन्म के बारे में थोड़ा बोलता हूँ, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, और फिर हम उनके एक दो पास्ट हम डिस्कस करेंगे तब तक समय खत्म हो जाएगा। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ये वास्तव में कौन है? तो रामानुजाचार्य के बारे में वर्णन आता है कि ये उनकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो साक्षात कौन है उनके नाम से पता चलता है, राम अनुज। हाँ, तो ऐसे कहा जाता है कि अनंतम प्रथमम रूपम, कि जो अनंत ये उनका पहला रूप है, लक्ष्मणम च तथा परा, उसके बाद वो प्रकट हुए किस रूप में, लक्ष्मण के रूप में। बलभद्रम तृतीयस्तु, तीसरे रूप में कौन सा उन्होंने धारण किया, बलभद्र। कलो कश्चित भविष्यति, ये यादवाचल महात्म्य में वर्णन आया है कि कलियुगा में रामानुजा के रूप में वही बलराम या वही लक्ष्मण या अनंत का विस्तार वो प्रकट होंगे। तो इनका प्राकट्य हुआ था 13 अप्रैल 1017 में 1070, और उनका डिसअपीयरेंस हुआ था 1137 1137 में। हाँ, तो इस समय रामानुजाचार्य का प्राकट्य हुआ था, और इतने पावरफुल आचार्य थे श्रीपाद रामानुजाचार्य। ऐसे कहा जाता है कि बलराम अपना जो विस्तार है अनंत शेष के रूप में करते हैं, और अनंत शेष के रूप में करके भगवान की दो प्रकार से सेवा करते हैं, एक है उनके लिए बेड बनते हैं और दूसरा है उनके लिए छतरी बनते हैं, अम्ब्रेला। कितना अमेजिंग अम्ब्रेला है, इतने सारे ऊड़ है सांप, तो ऐसे अम्ब्रेला बनते हैं। लेकिन फिर भगवान की एक सेवा रह जाती है जो सेवा भगवान को बहुत प्रिय है, तो वही क्या करते हैं, अपना विस्तार आगे करते हैं। वो सेवा इतनी विशेष है कि भगवान सोने से पूर्व वो सेवा चाहते हैं, सोने के बाद वो सेवा चाहते हैं। हाँ, तो वो सेवा क्या है, भगवान का गुणगान करना। क्या है वो सेवा, भगवान का गुणगान करना, उनका स्तुति वाचन करना। तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उनमें से एक शक्ति है धारण शक्ति, सारे जगत को धारण करती है, और दूसरी है कृष्ण कथा वर्णन शक्ति। कौन सी शक्ति, कृष्ण कथा वर्णन शक्ति। अभी ये मोटा मोटा हमें पता है कि राम अनुज, राम के अनुज है बलराम या वगैरह उनके विस्तार, लेकिन सूक्ष्मता से जाएंगे कि ये रामानुजाचार्य एग्जैक्टली कौन है। तो जो कृष्ण की एक शक्ति है बलराम के विस्तार की, जिसका नाम है कृष्ण कथा वर्णन शक्ति। कौन सी शक्ति, ये कृष्ण कथा वर्णन शक्ति जब मूर्तिमान रूप में हमारे सामने प्रकट होती है तो वो श्रीपाद रामानुजाचार्य है। और रामानुजाचार्य इतने पावरफुल थे, इतने सामर्थ्यवान थे कि सदैव भगवान का वो गुणगान करते थे। इसलिए भगवान की जो प्रिय चीज है, भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्या है, उनका गुणगान है। मैं कल चैतन्य भागवत पढ़ रहा था यहाँ बैठ के शाम को, तो मैं पढ़ रहा था कि वहां वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान अपना जो गुणगान है अपने प्रिय स्थान में छुपा के रखते हैं। कहा रखते हैं, कहते कि वो अनंत शेष के मुंह में रखते हैं अपना गुणगान, छुपा के रखते हैं, चुप ऐसे बंद। तो कहते केवल अनंत की कृपा से ही कोई व्यक्ति भगवान का गुणगान कर सकता है, या बलराम की कृपा से। वृंदावन दास ठाकुर कहते इसलिए मैं चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहा हूं। तो ऐसे रामानुजाचार्य शक्त्यावेश अवतार है भगवान अनंत शेष की कृष्ण कथा वर्णन शक्ति का। ये सारे थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, आप परेशान तो नहीं हुए अभी, ऐसे बैठ जाइए सीधा। तो बल्कि रामानुजाचार्य का प्राकट्य भी नहीं हुआ था, उनके गुरु के गुरु थे नाथ मुनि, उन्होंने तभी बोला था कि एक समय आएगा हाँ यमुनाचार्य आपका एक ऐसा शिष्य होगा जो क्या करेगा, हमारा भी उद्धार करेगा। गुरु क्या कह रहे हैं कि आपका एक शिष्य आएगा जो शिष्य हमारा भी उद्धार करेगा। हाँ ये मूड केवल 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 श्री संप्रदाय में पाया जाता है, और यही मूड हमारे संप्रदाय के दो आचार्यों में है, एक है श्रील प्रभुपाद और दूसरे है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो नाथ मुनि ने क्या किया था, इनके प्राकट्य से पूर्व ही रामानुजाचार्य का विग्रह बना दिया था, और ये गुरुगण उनकी पूजा करते थे। सोचो कितने महान आचार्य होंगे श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो ऐसे ये हाईएस्ट मूड केवल इसी संप्रदाय में पाया जाता है, और ये रामानुजाचार्य के जीवन में एक उदाहरण आता है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य श्रीरंगम से तिरुपति जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, और जब तिरुपति गए तो आप तिरुपति गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहां जो पहाड़ है उसको सप्तगिरी भी कहते हैं, और जितने पहाड़ हैं वो अनंत शेष के विस्तार है। अनंत शेष है ना नाग, वो गिर गए इस संसार में, वो एक अलग से लीला है। तो वो पहाड़ के रूप में है और भगवान तिरुपति बालाजी उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो किसी को जाना है बालाजी का दर्शन करने है तो उस पर चढ़ना है पहाड़ में, और पहाड़ साक्षात कौन है, बलरामी है या अनंत शेष है। तो जब ये वहां पहुंचे रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ, उन्होंने कहा अरे अभी मैं ऊपर नहीं जा सकता। तो उनके जो गुरु थे, एक कई गुरु थे, उनमें से एक थे जिनका नाम था शैलपूर्ण। शैलपूर्ण एक महान सन्यासी थे और वास्तव में रामानुजाचार्य के माँ के भाई थे, बहुत क्लोज संबंध था। रामानुजाचार्य का नाम भी किसने रखा था, शैलपूर्ण ने रखा था। तो शैलपूर्ण इतने महान आचार्य थे, गुरु थे, उन्होंने सुना कि रामानुजा आया है नीचे पहाड़ के नीचे, उन्होंने तुरंत उनके स्वागत के लिए, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं उन्नत भक्त का लक्षण है ये होना चाहिए कि यदि कोई महान वैष्णव आता है तो उसको भगवान की पूजा छोड़कर उसका स्वागत करने के लिए कहा होना चाहिए, गेट पर होना चाहिए, ये उन्नत भक्त का लक्षण है। कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या है, उसको केवल दो ही चीजें दिखाई देती है, मैं और भगवान, बीच में तीसरा कोई नहीं। उन्नत भक्त का लक्षण है कि वैष्णव को अप्रोच करते हुए वो भगवान की सेवा करता है। तो ये जो शैलपूर्ण है वो रामानुजाचार्य को स्वागत करने के लिए उस पहाड़ से नीचे आए माला और प्रसाद लेकर दौड़ते हुए। तो रामानुजाचार्य तो एक नए आचार्य थे ना, वो तो गुरु थे इतने महान उसी संप्रदाय के। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी, आप किसी नए भक्त को बोलते, नए भक्त को बोलते कि जाओ वो आए हैं उनका जरा स्वागत कर लो, माला पहनाओ भेज दो। तो कहते हैं शैलपूर्ण इतने बड़े गुरु थे उस संप्रदाय के, वो कहते हैं सन्यासी थे, वो कहते हैं जब मैं माला और प्रसाद उठा रहा था तो मैं ढोंढ सोच रहा था कि कोई और भक्त, न्यू भक्त जिसको भेजूं, कहे मुझे कोई नया भक्त नजर नहीं आया है। नजर आया कि सबसे नया भक्त कोई है तो कौन है, मैं हूं, इस कारण से मैं आपके स्वागत के लिए ये सब लेकर आया हूं। और यही चीज आप देखते हैं दुर्योधन में और किसमें, युधिष्ठिर में जब उनके गुरु ने कहा था जाओ जो सबसे अधिक पापी व्यक्ति है उसको हस्तिनापुर से पकड़ के ले आओ, तो दुर्योधन गया तो उसकी आंख में जब खोली तो सब उसको एक से बढ़कर एक पापी नजर आ रहे थे, दुष्ट नजर आ रहे थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ढूंढ ढूंढ के हस्तिनापुर में दिल्ली में घूम घूम के आए और उन्होंने कहा सबसे अधिक नीच पतित पापी कोई नहीं मिला, एक ही व्यक्ति मिला जो आपके सामने खड़ा हो। हाँ गदगद हो गए उनके गुरु। तो इस प्रकार से यहाँ शैलपूर्ण कहते हैं कि मुझे कोई नया भक्त नहीं मिला, नया भक्त मैं हूं, मैं सबसे नया हूं। हाँ इस प्रकार से वो उनको अप्रोच करते हैं और उनके सामने खड़े होते रामानुजाचार्य उनको देख के उनको प्रणाम करते हैं कि ये मूड है एक वैष्णव का, और यही मूड होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने महान आचार्य थे जिनको सिम्मा गुरु कहा जाता था, वो रास्ते से चले गए और जो मायावादी या पाखंडी कोई सामने से आ रहा हो तो रास्ता बदल देता था, या एक साइड से चलते थे, डरते थे भक्ति सिद्धांत महाराज से। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने शिष्यों के सामने वो बोलते थे, और जब शिष्यों के बीच में होते थे तो उनको प्रणाम करते थे। क्या कहते थे? दासोस्मि। क्या कहते थे? भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, मैं आप सबका क्या हो? दास। आप सबकी सेवा के लिए मैं हूं। ये मूड श्री संप्रदाय का है। इवन प्रभुपाद का भी यही मूड है। श्रीमद् भागवतम के ध्रुव चरित्र को आप पढ़ते हैं तो उसके एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जब ध्रुव महाराज को लेने के लिए विष्णु दूत आए थे, तो उस समय विष्णु दूत जब उनको कह रहे थे चलिए, तो कहते मेरी माता के लिए भी माता जा रही है कि नहीं? कहते देखो आपकी माँ दूसरे विमान में जा रही है। तो प्रभुपाद उसके श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि मेरा भी कोई ऐसा शिष्य हो जो मुझे कहाँ ले जाएगा? भगवत धाम ले जाएगा। ये प्रभुपाद की विनम्रता और ये मूड था। यही चीज श्री संप्रदाय की बहुत ग्लोरियस है, और चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें यही सिखाया है। दास दासानु दास, बल्कि एक अलग अर्थ है। कुलशेखर उन्होंने एक श्लोक लिखा जिसमें उन्होंने ये दास शब्द को 7 बार यूज किया है। कितनी बार? वो कहते हैं, पता नहीं यहाँ है कि नहीं, वो श्लोक में कहते हैं कि मुझे अब भक्तों के दासों का दासों का दासों का ऐसे 7 बार दास 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 बना दो। ये उनकी भावना थी उस संप्रदाय की। तो इस प्रकार से इवन रामानुजाचार्य भी इस मूड से भरे हुए थे। तो ऐसे श्रीपद रामानुजाचार्य का जो जन्म है वो हुआ था श्री पेरुम्बदूर में। कहाँ हुआ था? मद्रास या चेन्नई के पास 13 या 14 किलोमीटर एक छोटा सा विलेज है श्री पेरुम्बदूर। तो वहां उनका प्राकट्य हुआ था। उस स्थान का मूल नाम था भूतपुरी। वहां राजा अम्बरीश भी वहां गए थे। महाराजा अम्बरीश ने देखा वहां कि एक गाय को एक शेर खाने जा रहा है। महाराज अम्बरीश मारने गए तो गाय भी मरी और शेर भी मर गया, तो दुखी हो गए महाराजा अम्बरीश। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा एक महान भक्त इसी स्थान में प्रकट होगा जिसका नाम क्या होगा? श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो ऐसे रामानुजाचार्य की जो माता थी जिनका नाम था कांतिमती, और उनके पिता का नाम था केशवाचार्य जिनका दूसरा नाम था सर्वकृत, मतलब यज्ञ करने में बहुत दक्ष थे। तो इनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो ये डेली जाते थे मद्रास में जहां पार्थ सारथी का मंदिर है, भगवान पार्थ सारथी। मैं 2009 में गया था उनका दर्शन करने। तो वहां पार्थ सारथी के जो कृष्णा है, अर्जुन और कृष्णा है, कृष्ण के विग्रह को मूछे हैं, और ऐसी लंबी लंबी मूछे भगवान ने रखी है, हम तो हैरान हो गए वहां। तो और बहुत पावरफुल विग्रह है, मद्रास का मेन टेम्पल है। मद्रास में कहां भी पूछो किसी को, पार्थ सारथी मंदिर जाना है आपको बता देंगे। तो वैसे ही ये दोनों जाते थे, उनकी पूजा आराधना करते थे, और पार्थ सारथी की कृपा से ही इन्होंने प्रार्थना की जो भगवान उनको आशीर्वाद दे रहे थे कि मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए, आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। तो उनको फिर 1 साल के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम क्या रखा? शैलपूर्ण ने उनका नाम रखा रामानुजा, और उनकी सिस्टर थी जिनका नाम था दीप्तिमती, कांतिमती, दीप्तिमती। ये दो मती के दो पुत्र हुए, एक का नाम था रामानुजा, एक का नाम था गोविंद। तो ऐसे उनका प्राकट्य होता है और ये दोनों महान भक्त बनते हैं। तो रामानुजाचार्य स्वाभाविक रूप से बहुत बड़े विद्वान थे या पंडित थे, और जब रामानुजाचार्य प्रकट हुए तो वो एक मायावादी शिक्षक थे गुरु जिनका नाम था यादव प्रकाश, उनके यहाँ सीखने के लिए जाते थे। वो मायावादी हैं और रामानुजाचार्य वैष्णव थे, बालक थे, उनके पास जाते थे एज ए स्टूडेंट, उनसे सीखते थे। सीखते सीखते एक दिन एक जब उनके गुरु लेटे हुए थे और उनका मसाज कर रहे थे रामानुजाचार्य, और एक दूसरा एक विद्यार्थी आया और उन्होंने उस यादव प्रकाश को पूछा कि मुझे एक श्लोक का अर्थ समझना है जो छांदोग्य उपनिषद से है, और वो छोटा सा श्लोक क्या था, कप्यासं पुंडरिकं एवं अक्षिणी, इसका अर्थ मुझे बताइए, या कप्यासं इस श्लोक का अर्थ बताइए। तो ये जब श्लोक सुना उस यादव प्रकाश ने, तो उसने बोला, अभी अर्थ करने लगा एक शब्द का, जो शब्द था कप्यासं, क्या शब्द था कप्यासं। तो वो क शब्द का अर्थ उस यादव प्रकाश ने किया, क पिबंती इति कपि, जल को पीता है, कपि मीन्स बंदर, क शब्द का अर्थ क्या है बंदर, क पिबंती इति कपि। और दूसरा शब्द था कप्यासन, प्यासन का मतलब है कि जो बंदर के मल त्यागने का जो भाग है पीछे का लाल, वो तो वो श्लोक का अर्थ क्या बताया कि जो भगवान पुंडरीक है उनकी आंखें कैसी है, बंदर का जो पिछला भाग है रेडिश, उसके समान भगवान की आंखें हैं। इतना गंदा अर्थ किसने बोला, यादव प्रकाश है। अरे अरे, ये जब सुना रामानुजाचार्य जो मसाज कर रहे थे, यादव प्रकाश मायावादी है, भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते, तो ऐसे तोड़ मड़ कर अर्थ निकालेंगे वो शास्त्रों का। तो रामानुजाचार्य जब ऐसे उनकी पीठ में मसाज कर रहे थे, रामानुजाचार्य के आंखों से आंसू गिरे, गर्म आंसू थे, दुखी हो गए थे, गिरे तो उसके बॉडी पर गिरे, उनके जो मायावादी गुरु थे। उन्होंने कहा, रामानुजा क्या हो गया? उन्होंने कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना कैसे, ऐसा कैसे अर्थ कर सकते हो, भगवान की आंखें बंदर का जो बटक पिछला हिस्सा है रेडिश, उसके समान। ये बहुत गुस्सा हो रहे थे और बहुत दुखी हो रहे थे, क्योंकि भगवान के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम था। तो फिर स्वयं रामानुजाचार्य ने अर्थ बताना शुरू किया। ये सुनकर उनका गुरु बहुत गुस्सा हो रहा था। रामानुजाचार्य ने अर्थ क्या किया, कम जलम पिबती, मतलब जो सूर्य है वो क्या करता है, जल का पान करता है। यदि किसी स्थान में जल है तो उसको सूर्य ले लेता है, और उसमें एक जो कमल है वो हमेशा क्या होता है, खिलता है। तो इन्होंने अर्थ बताया था रामानुजाचार्य ने कि भगवान के जो आंखें हैं वो कैसी है, कमल के फूल के समान है। ये सुनकर उनके गुरु बिल्कुल गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, मुझसे ज्यादा विद्वान बन रहे हैं। तो तब से उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, और रामानुजाचार्य ने फिर खुद ही अपनी एक आर्टिकल लिखा था, ज्ञानम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम, उसके ऊपर। तो इनके गुरु को लगा कि ये तो मुझसे बढ़कर हो रहा है, उन्होंने सोचा इसको मार डालते हैं। गुरु ने क्या सोचा, शिष्य आगे बढ़ रहा है तो उसकी सीधा हत्या। तो आपने बाकी सारे स्टूडेंट्स को बोला कि हम सब योजना बनाते हैं कि हम गंगा स्नान करने के लिए निकल पड़ेंगे, तो सब गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, और रास्ते में योजना बनाते हैं जंगल में कि रामानुजाचार्य को मारेंगे। तो रामानुजाचार्य को पता चलता है कि ये मेरे हत्या करने वाले हैं। विद्यार्थी थे छोटे से, वो जंगल से भागते हुए वापस कांचीपुरम आते हैं। कांचीपुरम आकर फिर वो अपने गांव जाते हैं, जहां जाकर उनका विवाह होता है छोटी सी आयु में। और विवाह के बाद वो यहाँ निवास करना शुरू करते हैं कांचीपुरम में। तो जब रामानुजाचार्य कांचीपुरम में रह रहे थे, तो उनको एक भक्त से बहुत अधिक लगाव हो गया, उस भक्त से प्रेम हो गया। उनका नाम क्या था, कांचीपुरम, कांचीपूर्ण। क्या नाम था, कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण एक शूद्र परिवार में जन्मे थे, लेकिन भगवान की दिन रात सेवा करते थे, इसलिए उस एरिया में हर एक व्यक्ति उनसे प्रीति रखता था, इतने प्रिय हो गए थे। और रामानुजाचार्य ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान थे। तो रामानुजाचार्य ने एक दिन रास्ते में इनके गांव से वो गुजरते थे रोज, उनको पकड़ा और कहा कि आप मेरे घर आइए प्रसाद ग्रहण करने के लिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे मैं तो एक शूद्र हूँ, हाँ आप इतने विद्वान, हम ब्राह्मण हो। तो रामानुजाचार्य ने कहा यदि मेरी विद्वत्ता मेरी जाति भक्त की सेवा करने में बाधा आती है तो मैं ऐसे जाति का और विद्या का क्या करता हूँ, त्याग करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप ही मेरे लिए शिक्षा देने में सामर्थ्यवान है। आप जो बोलोगे वास्तव में भगवान आपके जीवा से बोल रहे हैं। तो रामानुजाचार्य सबसे पहले अपने जीवन में किसी वैष्णव के प्रति समर्पण करते हैं, वो कौन थे, कांचीपूर्ण थे। और कांचीपूर्ण से भगवान भरतराज बहुत अधिक प्रेम रखते थे। तो ऐसे रामानुजाचार्य निवास करते थे कांचीपुरम में, और इन्होंने कांचीपूर्ण को कहा कि आप मुझे क्या करो, उस सेवा में लगाओ। उन्होंने कहा मैं क्या सेवा दूं आपको। रामानुजाचार्य बहुत उनके पीछे लगे, तो उन्होंने एक सेवा दी कि तुम सेवा करना चाहते हो तो रोज भगवान वरदराज के लिए क्या करो, पानी लेके आओ, पानी भर के ले आओ। तो रामानुजाचार्य रोज 2 किलोमीटर दूर, वो भी एक अलग लीला है, वहां जाते थे, बाल्टिया भर भर के रोज किसकी सेवा के लिए पानी लाते थे, वरदराज के। इतने बड़े आचार्य लेकिन कितनी छोटी सेवा कर रहे हैं, इतनी से हमें रोज बोला जाए बाल्टिया भर के लाओ, हम कहेंगे नहीं, झाड़ू लगाने के लिए हमें परेशानी होती है। हाँ, लेकिन रामानुजाचार्य रोज भगवान की सेवा के लिए पानी लाया करते थे। तो ऐसे श्रीपद रामानुजाचार्य इतने महान आचार्य थे कि एक बार श्रीरंगम में जो श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है यमुनाचार्य, उनको लगा कि मेरे अप्रकट होने के बाद इस संप्रदाय को कौन संभालेगा। तो उनको उन्होंने सोचा एक ही व्यक्ति योग्य है और वो कांचीपुरम में रहता है, रामानुजाचार्य। किसी ना किसी प्रकार से रामानुजाचार्य को श्रीरंगम में लेके आना है। तो रामानुजाचार्य तो जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन यमुनाचार्य ने एक स्तोत्र लिखा जिसका नाम था स्तोत्र रत्न। अब भक्तिनाथ ठाकुर ने एक बुक लिखी है, वैष्णव सॉन्ग बुक, जिसका नाम है गीतमाला, जिसमें उस पूरे भक्तिनाथ ठाकुर बहुत प्रेम करते थे यमुनाचार्य से, और उनका उस स्तोत्र को पूरा बंगाली सॉन्ग में लिख दिया, वैष्णव सॉन्ग में भक्तिनाथ ठाकुर ने गीतमाला में। तो ऐसे उस स्तोत्र को यदि कोई व्यक्ति पढ़ता है तो वो चाहे या ना चाहे उसके हृदय में भगवान के लिए इतना आकर्षण उत्पन्न होता है कि उससे रहा नहीं जाता भगवान को देखे बिना, रंगना श्रीरंगम जाए बिना। तो यमुनाचार्य ने एक शिष्य को भेजा कि जाओ ये स्तोत्र को लेकर, और रामानुजाचार्य जहां दिखाई दे उसके आसपास जाकर जोर से इसको गाओ, वो जरूर आकृष्ट होगा इस स्तोत्र के प्रति। तो ये जो एक उनके शिष्य थे जिनका नाम था महापूर्ण, आगे चलकर रामानुजाचार्य के गुरु बने, दीक्षा गुरु, जिनका नाम था महापूर्ण। तो ऐसे ही महापूर्ण गए, देखा कि रामानुजा बाल्टियां भर के पानी मंदिर में ला रहा है, तो ये महापूर्ण एक कोने में बैठकर जोर जोर से स्तोत्र रत्न का उच्चारण कर रहे थे श्लोकों का। उसको सुनते ही रामानुजाचार्य रुक गए, बाल्टियां हाथ में रखे, गदगद होने लगे और आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा ये क्या है, ये कौन भगवान की वंडरफुल स्तुतियों का गान कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि यमुनाचार्य के द्वारा कंपाइल है भगवान रंगनाथ की सेवा के लिए। तो रामानुजा कहने लगे कि अभी तो वो यमुनाचार्य बीमार है, बल्कि यमुनाचार्य चाह रहे थे कि रामानुजाचार्य श्रीरंगम में आए, इस संप्रदाय को संभाले, मैं शरीर त्यागने के लिए तैयार हूं। तो यमुनाचार्य इंतजार कर रहे थे, तो महापूर्ण रामानुजाचार्य को लेकर कांचीपुरम से श्रीरंगम आते हैं। आते आते रास्ते में जब उन्होंने श्रीरंगम में प्रवेश किया, प्रवेश करते उन्होंने देखा कि उनके जो महान आचार्य हैं उन्होंने शरीर छोड़ दिया है या शरीर त्यागा है। तो ये देखकर रामानुजाचार्य बहुत दुखी हो गए, और फिर रामानुजाचार्य जब यमुनाचार्य के पास गए, उनके चरणों में बैठे, तो देखा कि उनका शरीर लेटा हुआ है और उनके हाथ की ये जो 3 उंगलियां हैं, हाँ ये ऐसी थी, बंद थी, बंद। तो उन्होंने पूछा कि इनकी 3 उंगलियां क्यों बंद है, किसी को पता नहीं चला। हाँ, आज तक ये उंगलियां ऐसी नहीं थी, हमेशा ऐसी थी यमुनाचार्य की। तो रामानुजाचार्य उनके पास खड़े हो जाते हैं और सारे संसार को ये दिखाते हैं कि फर्स्ट क्लास डिसाइपल कैसे होना चाहिए। तीन प्रकार के शिष्य है ना, एक शिष्य है जो गुरु की मन की बात जानता है और करने लगता है। दूसरा है गुरु बोलते हैं तब करता है, गुरु कहेंगे बेटा ये करो तब करेगा। और तीसरा है गुरु बोल बोल के थक जाते हैं बेचारे, तभी भी वो करता नहीं है, थर्ड क्लास डिसाइपल। तो रामानुजाचार्य फर्स्ट क्लास थे, वो आज तक उनसे मिले नहीं थे, और मिले तो कौन सी स्थिति में, उनके इस महान गुरु ने शरीर त्यागा था, यमुनाचार्य ने पहली बार उनको देखा तो उनकी तीन उंगलियां, तो उन्होंने पूछा ये उंगलियां ऐसी थी नहीं, कहते वो स्ट्रेट थे। तो रामानुजाचार्य के विचार आया मन में कि जरूर उनकी तीन इच्छाएं पूर्ति नहीं हुई है जिनको एक शिष्य को पूर्ति करना है। तो रामानुजाचार्य ने कहा, पहली उन्होंने अनाउंसमेंट की, उन्होंने कहा मैं सारे संसार में ये स्थापित करूंगा कि भगवान विष्णु ही क्या है या उनसे बढ़कर परम सत्य कोई और नहीं है, और श्री भाष्य को लिखूंगा, ब्रह्म सूत्र का जो भाष्य है। और दूसरी चीज उन्होंने कही, नहीं पहली चीज उन्होंने कही थी कि मैं खुद विष्णु भक्ति में फिक्स हो जाऊंगा और सारे जगत में भगवान की महिमा का प्रचार करके लोगों जो मोहग्रस्त जीव है उनको मुक्त कराऊंगा, ये पहली चीज। तो ऐसे जैसे बोला उनकी एक उंगली ऐसी सीधा हो गई यमुनाचार्य के, अरे सारे लोग देखने लगे ये क्या है, इतने पावरफुल है रामानुजन। और दूसरी चीज उन्होंने वो बोली कि मैं विष्णु को स्थापित करूंगा कि वो परम सत्य है और उनसे बढ़कर कोई और नहीं है, और श्री भाष्य की वेदांत सूत्र की श्री भाष्य की टीका लिखूंगा। तो देखा दूसरी उंगली भी खड़ी हो गई, अभी तीसरी का वेट कर रहे थे सब लोग। हाँ, तो रामानुजाचार्य ने बोला कि मैं एक महान भक्त हुए हैं पराशर मुनि व्यास देव के पिता, जिन्होंने भगवान विष्णु के बारे में बहुत लिखा है। हाँ, विष्णु पुराण में महिमा, विष्णु की महिमा बहुत सारे लिखी है। तो उस महान आचार्य के नाम से अपने एक शिष्य का नाम रखूंगा, जिसका नाम रखूंगा पराशर। ऐसे जैसे बोला यमुनाचार्य की तीनों उंगली ऐसे खड़ी हो गई। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य अपने गुरु की मन की बात जानते थे। हाँ, तो ऐसे श्रीपद रामानुजाचार्य के जीवन में असीमित बहुत सारी घटनाएं हैं। बल्कि उनका विवाह हुआ था, उनकी पत्नी का नाम था रक्षा कंबल, लेकिन वो ऐसी पत्नी थी जो भक्तों से द्वेष करते थे। हाँ, भक्त उसे सहन नहीं होते थे, घर में कोई भक्त आ जाए वैष्णव आग बबूला हो जाते थे। एक बार रामानुजाचार्य ने सोचा कि मैं जाता हूं अभी श्रीरंगम, वो गए और रास्ते में उनको महापूर्ण मिले जो दीक्षा देने के लिए आए थे, और उन्होंने कहा चलो हम कांचीपुरम में जाकर वहां दीक्षा सेरेमनी करेंगे, आपको दीक्षा देंगे। रामानुजाचार्य कहते नहीं, मृत्यु कभी भी आ सकती है, अभी इसी पेड़ के नीचे मुझे दीक्षा दो, कोई बहुत सारा यज्ञ और आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है, मृत्यु दीक्षा लिए बिना मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की गति अच्छी नहीं है। रामानुजाचार्य ने कहा गुरुदेव मुझे अभी दीक्षा दे दो, तो पेड़ के नीचे रस्ते के किनारे ही रामानुजाचार्य ने दीक्षा लेते हैं। फिर अपने गुरु को लेकर आते हैं कांचीपुरम में, और अपने घर में जो उनके गृहस्थ गुरु थे महापूर्ण, उनकी पत्नी और उनको वहां रखते हैं एक रूम में, अपनी पत्नी के साथ वो एक रूम में रहते हैं। तो एक दिन ये दोनों की जो पत्नियां हैं पानी भरने कुएं में चली गई थी, और रामानुजाचार्य और उनके जो गुरु हैं वो कहाँ चले गए थे। तो ये जो दो स्त्रियां जब गई तो गुरु की जो पत्नी थी पानी ऐसे भर रहे थे, और भरते भरते उसके थोड़ा सा जल वो जो रामानुजाचार्य की पत्नी थी उसके जो घड़ा था उसमें थोड़ा सा ऐसे गिर गया। वो चिल्लाने लगे, कहते निम्न जाति की, कहीं ब्राह्मणों में भी अलग अलग कैटेगरी होती है ना, निम्न जाति की, तुम्हारा जल मेरे घड़े में टच हुआ है। कहते ये मेरा पागल पति है, किसको किसको लाकर घर में रखता है, गुरु उसकी पत्नी और ये सबको ऐसी बोलने लगे। तो उनकी जो महापूर्ण की जो पत्नी थी रामानुजाचार्य की, गुरु की पत्नी, वो शांत रहे, एक शब्द उसने उच्चारण नहीं किए। वो गई अपने पति को कहा, रामानुजाचार्य महापूर्ण ने बोला, चलो अच्छा है, भगवान चाहते हैं कि वापस मुझे श्रीरंगम में बुलाए और रंगनाथ की सेवा करने के लिए। हाँ, उन्होंने एक कृपा सोचा कि भगवान की कृपा हो गई, मेरे पत्नी को डांट मिली और जिसके कारण मुझे श्रीरंगम जाने का मौका मिला। हमें होता है ना, भक्त को दंड देते तो उसको भेजते जाओ वृंदावन, मायापुर होके आ जाओ, जगन्नाथपुरी दो तीन बिता के आओ, फिर ठीक हो जाओगे। हाँ, तो वैसे ही ये चले गए। फिर रामानुजाचार्य आए, हरण पूछा, नहीं मेरे गुरु जी नहीं दिख रहे, उनकी पत्नी नहीं दिख रही है। देखा कि वो दोनों छोड़ के चले गए हैं। रामानुजाचार्य बहुत गुस्सा हो गया अपनी पत्नी के ऊपर। और दूसरा एक कांड उनकी पत्नी ने किया था, उनके दूसरे गुरु कांचीपूर्ण को कहा कि आप मेरे घर में प्रसाद लेने के लिए आई है, ताकि रामानुजाचार्य उनका उच्चिष्ट खाना चाहते थे। तो कांचीपूर्ण को लगा कि ये रामानुजा बहुत चतुर है, मेरा उच्चिष्ट खाना चाहता है। तो ये कांचीपूर्ण रामानुजाचार्य उनको ढूंढने गए, कांचीपूर्ण पहले उनके घर में पहुंचे। तो उनकी पत्नी ने जो भी बनाया था, कांचीपूर्ण ने कहा जो भी माता जी आपने बनाया मुझे दे दीजिए। उन्होंने दे दिया, वो खाया उन्होंने जल्दी जल्दी और दूसरे रोड से भाग गए। और जो भी उनका प्लेट था, सब कुछ था, वो उठा के पत्नी ने फेंक दिया, कहा कि ये शुद्र व्यक्ति है। और जहां वो उनके गुरु जी बैठे थे जिस स्थान में प्रसाद खाने के लिए, तुरंत गोबर लेके आ गए, उसको पूरा लेपन करके साफ आदि किया। फिर रामानुजाचार्य पूछने लगे, मेरे गुरु जी आए थे प्रसाद के लिए, कहते आगे चले भी गए, उनका उच्चिष्ट कहा है, कहते मैंने फेंक दिया, और देखिए शुद्ध हो अशुद्ध हो गया था, उस स्थान का लेपन भी किया। अभी रामानुजाचार्य को अपनी पत्नी टॉलरेट नहीं हो रहे थे, उसकी उनकी सहनशीलता भी परमोच्च सीमा तक बढ़ रही थी। तो फिर ऐसे जब हुआ तो रामानुजाचार्य से रहा नहीं गया। और तीसरी बार एक घटना हुई, एक वैष्णव रामानुजाचार्य जा रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए, वहां से एक ब्राह्मण आ रहा था और उनको कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, आप तो बहुत दुबले पतले हो गए हो। रामानुजाचार्य कहते क्या करें, कोई देता ही नहीं प्रसाद आदि, और अभी अभी आया हूं आपके घर से। हाँ, ये जो ब्राह्मण है, भिक्षा मांगते ना ब्राह्मण जाते हैं ऑफिशियली भिक्षा, हम छोटे थे तो हमारे गांव में भी कुछ लोग ब्राह्मण हर रोज जाते थे, हम आटा देते थे उनको, कुछ कुछ देते थे। तो वैसे ब्राह्मण ये जाते थे उनके घर, गए तो उनकी पत्नी चिल्लाती हुई, काम नहीं आप सबको, पत्नी ने डांट फटकार कर गालियां देकर उस ब्राह्मण को भेजा। और ब्राह्मण रोते हुए जा रहा था, रामानुजाचार्य ने कहा क्यों दुखी हो ब्राह्मण, और इतने पतले लग रहे हो, एकदम अस्वस्थ हो। उन्होंने कहा आपके घर से भी प्रसाद पाके आ रहा हो। पत्नी का जो शाब्दिक प्रसाद है, तो फिर ये दुखी हो गए, कहते कि क्या है। हाँ, क्योंकि उनका चीजें थी वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा करना। तो रामानुजाचार्य ने कहा आप भी भेजता हूँ आप मेरे घर। रामानुजाचार्य ने अपने डायरी से एक पेपर निकाला और पेन लिया, लिखा चिट्ठी लिखा। हाँ, वो चिट्ठी लिखकर ब्राह्मण को कहा ये ले लो, और आप मेरे घर जाओगे फिर देखो कब तुम्हारी कैसी देखभाल होती है। वो चिट्ठी क्या लिखा था उन्होंने रामानुजाचार्य ने, मतलब ये लिखा था कि वो जो रक्षा कंबल उनकी पत्नी थी, उसके पिता के घर से चिट्ठी थी कि पिता ने लिखा हुआ है कि मेरी प्रिय बेटी रामानुजा, मैं अभी मेरे दूसरे बेटी की शादी करने जा रहा हूँ, तो घर में इतने सारे काम हैं, तुम क्या करो मेरे बेटे को जल्दी भेज दो। हाँ, वहां मायके में थोड़ा कार्यभार करने के लिए। तो ऐसा रामानुजाचार्य ने जब चिट्ठी लिख के दिया तो गई, तो उन्होंने कहा से आए हो, कहते आपके गांव से आया, आपके पिता ने भेजा है, फिर तो सोचो मत। उनके लिए नहाने के लिए गर्म पानी, ब्रेकफास्ट, नए वस्त्रों, ब्राह्मण तो खुश हो रहा था। तो अभी सब आनंद से वो प्राप्त किया और चला गया। अभी रामानुजाचार्य एंट्री कर गए घर में, उन्होंने कहा क्या हो रहा है, कहते देखिए मेरे घर से पिता का लेटर आया है, रामानुजाचार्य खुद लिखा था। वो फिर पढ़ने लगे जोर जोर से, तुम्हें आज के आज बुलाया है।
बस से वो छुट्टी लेना चाहते थे परमानेंटली रामानुजाचार्य। तो फिर रामानुजाचार्य ने कहा आज से आज बुलाया है और एक ब्राह्मण तुम्हें लेने के लिए आया है, तुम अपना बैग पैक करो निकल पड़ो अभी। वो बहुत खुश हो गए, वो निकल गए। रामानुजाचार्य ने फिर कहा भगवान भरतराज आज मुझे आप आपके चरणों में पूर्ण रूपेण स्वीकार कीजिए। इसको कहते हैं श्री संप्रदाय में प्रपन्ना, मतलब शरणागति। श्री संप्रदाय में टॉप मोस्ट चीज है शरणागति, वो नापा जाता है भक्त के उन्नति, सरेंडर। तो ऐसे रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं तो बहुत अभी संसार से परेशान हो गया हूं, मैं तो बस पूर्ण रूपे ने आपकी शरण में आना चाहता हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। फिर रामानुजाचार्य घर से बाहर चल पड़े, चले पहले मार्केट में गए, जैसे हम जाते ना वृंदावन कपड़े खरीदने, ये लेके आते सफेद कपड़े ले आते हैं, फिर उसको डुबाते कलर में, फिर सैफरन पहन लेते। तो रामानुजाचार्य भी ग्रस्त थे और आज उन्होंने निश्चय लिया था, पत्नी चली गई आज मुझे संन्यास लेना ही लेना है। तो ऐसे रामानुजाचार्य मार्केट गए, वहां से दो जोड़ा कपड़े खरीदे, डंडा एक ले लिया और सीधा भगवान का जो मंदिर है भरतराज, आप कांचीपुरम जरूर जाओ, वहां गए, डंडा और वस्त्र लेके सीधा भरतराज भगवान के सामने, कृष्ण के विग्रह है उनके सामने गए। और बाहर निकले तो कैसे थे, सन्यासी वेश में, वस्त्र आदि धारण करके दंडा हाथ में लेके निकल पड़े मंदिर से बाहर। बाहर आए तो उनके गुरुजी मिले, दूसरे कई सारे गुरुजी हैं, 9 गुरुज थे। कांचीपुरण मिले, कांचीपुरण ने देखा रे ये क्या है, आज शोभा बढ़ रही है। तो देखा कि वहां अनंत सरोवर है जिसके किनारे कांचीपुरण ने यज्ञ किया और रामानुजाचार्य को, बल्कि रामानुजाचार्य ने संन्यास किससे स्वीकार किया था, कृष्ण से सीधा, और इसी को कॉपी किया था हमारे एक आचार्य ने, कौन थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। जब गौर पूर्णिमा का दिन था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने गुरुदेव का फोटो आगे रखा, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, और उनसे संन्यास स्वीकार किया फोटो से, और नाम रखा खुद का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो वैसे रामानुजाचार्य ने नाम तो अपना नहीं रखा, लेकिन उनका नाम अपने आप में इतना पावरफुल था, लेकिन उनके गुरु कांचीपुरण ने उनका नाम रखा। क्या नाम रखा, यतिराज। क्या नाम था, यह यतिराज, यति मीन्स सन्यासी। सन्यासियों में जो किंग है वो है वास्तव में श्रीपद रामानुजाचार्य। तो ऐसे रामानुजाचार्य संन्यास ग्रहण करते हैं और फिर इतना अधिक प्रचार करते हैं कि जिसकी तुलना नहीं, और उनके बहुत 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 शक्तिशाली शिष्य हुए हैं। उन शिष्यों के बारे में हम सुनते हैं तो आंखों से आंसू टपक पड़ेंगे, इतना समर्पण था अपने गुरु के लिए, इतना इतना अधिक सेवा की भावना थी। तो ऐसे श्रीपद रामानुजाचार्य का तिरोभाव है आज। तो उन्होंने अपने दो शिष्य आंध्रपूर्ण और एक थे गोविंद, एक शिष्य के गोद में अपना सर रखा, एक शिष्य के गोद में अपने चरण रखे, और अपने जो गुरु थे यमुनाचार्य उनके जो खड़ा है चरण पादुका वो सामने रखते हुए उसको देखते हुए अपने शरीर का क्या किया, त्याग किया। ऐसे श्रीपद रामानुजाचार्य थे। तो ऐसे रामानुजाचार्य बहुत महान भगवान के प्रिय भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत लिखा है रामानुजाचार्य के बारे में अपने तात्पर्य में। एक जगह कहते हैं कि शंकराचार्य का जो सिद्धांत है शारीरिक भाष्य जो वेदांत है उसको तोड़ा है एक पावरफुल आचार्य ने, प्रभुपाद कहते हैं, और वो कौन है, रामानुजाचार्य। चैतन्य महाप्रभु ने रामानुज जगन्नाथ जी की भी एक लीला आती है रामानुजाचार्य के बारे में। जब रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी आए तो उन्होंने देखा यहाँ के पंडा कैसी सेवा कर रहे, सारा उठपटांग सेवा हो रही है, कुछ नियमों का ठीक से पालन नहीं, सिस्टमैटिक नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इनको मैं ट्रेनिंग दूंगा, कल क्लास होगी, सारे पुजारियों की कल सुबह क्लास कि कैसे विग्रह की सेवा करनी है। तो राजा को कन्विंस कर दिया जगन्नाथपुरी के, कि कल से डेली वर्शिप क्लास शुरू होगी पुजारियों की, तो सारे पुजारी वैसे परेशान हो गए, क्लास ट्रेनिंग किसको अच्छा लगता है क्या? नियम हमें फ्रीडम अच्छा लगता है, यही तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फ्रीडम स्वतंत्रता। असली स्वतंत्रता क्या है? अपनी स्वतंत्रता को कृष्ण के चरणों में अर्पण करो। तो ये बोल के मैं खत्म करता हूं। तो रामानुजाचार्य का इंतजार करने के लिए सारे जो जगन्नाथपुरी के पंडा पुजारीगण सिंह द्वार में खड़े हो गए मंदिर के, क्या अभी वो आएंगे? आएंगे आएंगे, सूर्य उदित भी हो गए, अभी तक रामानुजाचार्य का पता नहीं है। तो पता चला कि रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी में ही नहीं है। रात को जब सो रहे थे, जगन्नाथ जी को थोड़ा भी सहन नहीं होता कोई उनके भक्तों की ओर उंगली उठा ले, वो टॉलरेट नहीं होता जगन्नाथ को। तो जगन्नाथ जी ने क्या किया, रामानुजाचार्य रात को सो रहे थे, उनके बेड के साथ वहां से उठा लिया उनको। हाँ, आप विशाखापट्टनम गए हो? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के पास एक बड़ा टाउन है, उसका नाम मैं भूल गया। उधर उस टाउन से 14 किलोमीटर दूर जाते हैं तो वहां एक छोटा सा गांव है, बहुत ही छोटा, रिमोट विलेज, कुर्म क्षेत्र उस गांव का नाम है। वहां जाकर रामानुजाचार्य को पटक दिया, वहां से लगभग 700 किलोमीटर पूरी से। हाँ, हम ट्रेन में बैठे थे 3 बजे, तो रात को 10 बजे पहुंचे थे। तो वहां पटक दिया रामानुजाचार्य सुबह उठते कि चलो आज मुझे क्लास लेनी है सुबह। आके खोलते हैं तो रामानुजाचार्य कहाँ थे? ऐसी जगह जहां उनको कोई जानता भी नहीं है। आग खोली तो देखा किसी एक छोटे से कमरे में है, छोटे से गांव में। हाँ, तो यहाँ भगवान जगन्नाथ को सहन नहीं हो रहा था। तो ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कल भी कहा था कि इन आचार्यों का बारे में श्रवण करके पढ़ के जिसके हृदय में, जिसका हृदय पिघलता नहीं है, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली है। हमारे जीवन की सफलता क्या है? भगवान से प्रेम तो होना मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन आचार्यों से प्रेम हो जाए तो हमारा जीवन सफल है। भगवान हमारे लिए बहुत दूर की वस्तु है, श्रील प्रभुपाद हमारे लिए बहुत क्लोज है। प्रभुपाद और इन आचार्यों से हमारे हृदय में आकर्षण, लगाव, प्रेम की भावना हो तो हम बच सकते हैं। चाहे हमारे अंदर कितनी कमियां क्यों ना हो, कितनी अशुद्धियां क्यों ना हो, लेकिन वैष्णव की कृपा से हम तुरंत शुद्ध हो सकते हैं। नारद की कृपा से कितने गंदे से गंदे लोग क्या बने? महावैष्णव बने। प्रभुपाद की कृपा से सारे हिप्पी क्या बने? हैप्पीज बने। तो हम चाहे जितने मलिन हो, लेकिन इन आचार्यों के चरणों में पड़े रहेंगे, उनका गुणगान गाएंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन हमारा हृदय पूर्ण रूप में शुद्ध हो जाएगा, और जिसमें कृष्ण आनंद से निवास करेंगे। तो ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य हैं जिनके बारे में सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके चरित्र के बारे में मेडिटेट कर सकते हैं, ताकि हम शुद्ध हो जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुवाद इति महामहोत्सव के श्रील प्रभुपाद की निकाय तौर पे।